आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका पार्थ को बेसब्री से इंतजार था। आज राजवंश एम्पायर में शेयर्स को लेकर मीटिंग होने वाली थी। अभिमन्यु समय से वहां पहुंच गया था। दिग्विजय और वसुधा ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करने वाले थे। उनके अलावा और भी कुछ शेयर होल्डर्स जो आ नहीं सकते थे, वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ने वाले थे। राजवंश एम्पायर की मेन ब्रांच भले ही गोवा में हो, लेकिन उनकी कंपनी की बाकी ब्रांचेस दूसरे देशों में भी मौजूद थीं। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी। इस वजह से वे सभी लोग जो थोड़े ही शेयर्स के जरिए किसी ना किसी कंपनी से जुड़े हुए थे, वे इस मीटिंग में शामिल थे और अपना वोट देने वाले थे कि आज उन्हें किसे अपना सीईओ बनाना था। हालांकि ये मीटिंग पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, लेकिन न जाने कैसे मीडिया को इस बारे में खबर मिल गई और वे भी इसे कवर करने के लिए बेताब थे। राजवंश एम्पायर के एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे और गॉसिप का सब्जेक्ट एक ही था, उनका नया सीईओ कौन बनेगा। पहले जब अभिमन्यु नया आया था, तब ज्यादा लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि छोटी सी गलती पर वो उन्हें काम से निकाल देता था। लेकिन धीरे धीरे अभिमन्यु की अच्छाई उन्हें नजर आने लगी। कुछ लोग अभिमन्यु के पोजीशन से हटाने की दुआ कर रहे थे, तो कुछ यही चाहते थे कि अभिमन्यु ही सीईओ बना रहे, क्योंकि नकुल और नकुल दोनों ही इतने बड़े पद को संभालने के लायक नहीं थे। मीटिंग शुरू होने से पहले अभिमन्यु अपने केबिन में पृथ्वी के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। पृथ्वी ने अभिमन्यु के चेहरे को देखा, जो काफी रिलैक्स नजर आ रहा था। उसने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि वे आपको आपकी पोजीशन से हटा देंगे? मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वे इसके लायक नहीं है। दूसरा, अगर वे मुझे पोजीशन से हटा भी देंगे तो मेरे बैकअप प्लान्स बनाए हुए हैं। मैं अपने शेयर्स को अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर दूंगा, जो उनकी नज़रों में नहीं है। तुम जानते हो ना, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अभिमन्यु ने न दिखने वाली स्माइल के साथ कहा, जिससे पृथ्वी को उसके प्लान समझ में आ गए थे। अगर ऐसा हुआ तो राजवंश एम्पायर के स्टॉक गिर जाएंगे और आपकी कंपनी उनकी जगह ले लेगी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि लंदन में आप राजवंश एम्पायर का ब्रांच संभालने के साथ साथ अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहे थे। यू आर ब्रिलियंट सर, पृथ्वी अभिमन्यु की तारीफ करते हुए बोला। यस आई एम, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरों को उनकी पोजिशन से गिराने पर नहीं बल्कि खुद को स्ट्रांग करने पर था, अभिमन्यु ने जवाब दिया। जब अभिमन्यु ने इशिका को प्रपोज किया था, तब उसे चिढ़ाने के लिए अभिमन्यु ने ऐसे ही मजाक में कहा था कि कल को अगर वो राजवंश एम्पायर का सीईओ नहीं रहा तो क्या वो तब भी उसका साथ निभाएगी। उस वक्त इशिका ने हर सिचुएशन में अभिमन्यु का साथ देने का वादा किया था। हालांकि अभिमन्यु की जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आने वाला था जब उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़े। अभिमन्यु और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी केबिन का दरवाजा एक झटके में खुला। उन्होंने देखा, सामने से इशिका आ रही थी। सिर्फ इशिका ही थी जो बिना नॉक किए अभिमन्यु के केबिन में इस तरह एंटर कर सकती थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। पृथ्वी ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में अभिमन्यु से कहा, मुझे लगता है आपको मैम को सच बता देना चाहिए, वो परेशान लग रही है। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सिर हिलाया। पृथ्वी उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया था। पृथ्वी के जाते ही अभिमन्यु अपने चेयर से उठा और इशिका के पास आकर केयरिंग वे में कहा, तुम्हें मैंने बाहर निकलने से मना किया था, यहाँ मैं हूँ सब संभालने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम सब संभाल लोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इशिका ने जवाब दिया। इसे मन ही मन अभिमन्यु के लिए बुरा लग रहा था। दादी के अलावा फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो अभिमन्यु को प्यार करता हो या उसे सपोर्ट करना चाहता हो। इशिका की आंखों से उसके दिल के जज्बात समझते हुए अभिमन्यु ने उसी न दिखने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम्हें डर लग रहा है कि कोई मुझे मेरी पोजीशन से हटा देगा? अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरे खर्चे उठाने के लिए तैयार रहना इशिका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इशिका ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, ना कि इस पोजीशन पर। देखा जाए तो आज अगर वे मुझे इस पोजीशन से हटा दे तो अच्छा होगा ना, मैं फिर तुम्हें पूरा टाइम दे पाऊंगा, पर तुम्हारा पति अचानक से बेरोजगार हो जाएगा, अभिमन्यु ने इशिका को परेशान करते हुए कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं राजवंश एम्पायर की सीईओ की पोजीशन पर नकुल या पार्थ को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। रही बात तुम्हारे बेरोजगार होने की, तो डोंट वरी, मैं अपनी कंपनी में तुम्हें एक छोटी सी जॉब तो दे ही सकती हूँ, इशिका ने टीजिंग स्माइल के साथ जवाब दिया। अगर मेरी वाइफ ऐसा चाहती है तो यही होगा। अब तुम कुछ मांगो और मैं मना कर दूँ, ये थोड़ी ना हो सकता है, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर कहा और इशिका को अपने करीब खींच लिया। उसने इशिका के गाल पर अपना गाल रखकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। इस मीटिंग के बाद मैं रेस्ट ही करने वाली हूँ। वैसे कब शुरू होगी मीटिंग, क्या मैं इसे अटेंड कर सकती हूँ? इशिका ने पूछा। बिल्कुल कर सकती हो, 5% शेयर्स तुम्हारे नाम पर हैं और तुम मेरी वाइफ हो। मीटिंग अगले 2 घंटे में शुरू हो जाएगी, चलो तब तक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसे इस शेयर्स के बंटवारे की मीटिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ होटल में श्रुति नाश्ते के लिए राधिका को बुलाने के लिए गई। रात को आने में देर हो गई थी और सुबह भी वो खुद से नहीं उठी, तो श्रुति को उसकी फिक्र होने लगी। श्रुति ने राधिका के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए परेशान स्वर में पूछा, राधिका तुम ठीक हो ना? मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी और रात को कब आई पता ही नहीं चला। श्रुति की आवाज सुनकर राधिका ने खुद को तुरंत संभाला। पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और थोड़ी सूजन भी आ गई थी। राधिका की जिंदगी में श्रुति बहुत मायने रखती थी। उसने आज तक उससे कुछ नहीं छुपाया था। जैसे ही राधिका ने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी हालत देखकर श्रुति हैरान रह गई। राधिका उसकी गले लग गई। उसे किसी के इमोशनल सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। राधिका का हाल देखकर श्रुति को समझने में देर नहीं लगी कि कल डिनर पर क्या हुआ होगा। वो राधिका से अलग हुई और उसे ले जाकर बेड पर बैठाया। श्रुति ने उसे पानी देते हुए कहा, इसका मतलब उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हारी हालत साफ बता रही है कि तुमने उसे कुछ नहीं बताया होगा। तुम्हें उसे बता देना चाहिए राधिका। मैं बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे तो ये लगता है कि उसके फैमिली मेंबर ने मेरे साथ गलत किया जिसकी वजह से इशिका का जन्म हुआ। ऐसे में क्या कहती मैं उसे कि ये गलती किसी और से नहीं खुद केशव से हुई है, राधिका ने भारी आवाज में बताया। श्रुति उसकी हालत समझ सकती थी। उसकी जगह कोई और होता तो उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती। श्रुति ने राधिका को ज्यादा फोर्स नहीं किया। उसने राधिका को प्यार से सहलाते हुए पूछा, फिर आगे क्या सोचा है तुमने? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। मैंने केशव को फिर से उस कसम में बांध दिया है। जब हम मिलेंगे ही नहीं तो मेरे दिल में भी गिल्ट नहीं रहेगा। रही बात इशिका की, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि उसका डैड कौन है। राधिका ने अपना फैसला श्रुति को बता दिया। हालांकि श्रुति ने उसे इस मामले में कुछ नहीं कहा क्योंकि ये राधिका की जिंदगी थी। बस उसे मन ही मन केशव के लिए बुरा लग रहा था। श्रुति राधिका के पास से उठी और बोली, अच्छा ठीक है, अब जो तुमने फैसला ले ही लिया है तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ते के बाद हम गोवा के लिए निकलेंगे। यही सही रहेगा, राधिका ने बुझी आवाज में कहा और उठकर अपने कपड़े निकालने लगी।
वहीं श्रुति उनके लिए ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवाने की तैयारी करने लगी। बाहर निकलते हुए उसने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि केशव को कुछ याद नहीं? ठीक है, रात को नशे में कुछ याद नहीं रहा होगा, लेकिन जब वो सुबह उठा तो क्या उसने खुद को उस हालत में नहीं देखा होगा जिससे उसे अंदाज़ा हो जाए? क्या ये सब कुछ इतना ही नॉर्मल है या किसी ने इनके बीच दूरियां पैदा करने की साजिश की होगी? लेकिन ऐसा कोई कौन और क्यों करेगा? क्या मुझे इस मामले में केशव से बात करनी चाहिए? लेकिन अगर राधिका को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होगी। श्रुति सच में राधिका और केशव की मदद करना चाहती थी, पर वो भी बीच में फंसी हुई थी। अगर उसके किसी एक्शन से राधिका दुखी होती तो उनकी दोस्ती पर बात आ सकती थी। श्रुति ने फिलहाल इस मामले पर शांत रहकर पता लगाने का सोचा। वहीं दूसरी तरफ राजवंश एम्पायर में बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी थी। एक एक करके सारे मेंबर्स आना शुरू हो गए थे और जो नहीं आए थे वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे थे। मीटिंग को हैंडल करने वाले उनके मैनेजर मिस्टर दत्त थे। मीटिंग की शुरुआत करते हुए मिस्टर दत्त ने उन सबको एड्रेस करते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स टू यू ऑल कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। जैसा कि मिस्टर पार्थ रायचंद ने कुछ रिपोर्ट्स और बाकी सबूत पेश किए हैं, उससे साफ है कि वो मिस्टर प्रशांत रायचंद के बेटे हैं और अब इस तरह से राजवंश फैमिली में एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर जुड़ चुका है, तो कंपनी के शेयर्स जो कि 90% उनके पास हैं उनका फिर से बंटवारा होगा। जैसे ही मिस्टर दत्त ने पार्थ का इंट्रोडक्शन दिया, हर कोई हैरानी से पार्थ की तरफ देखने लगा था। इससे मिस्टर प्रशांत रायचंद को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन वो शांत बैठे थे। नकुल ने अपने सामने लगे माइक में तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मिस्टर दत्त ने बताया कि मेरा भाई अब आ गया है, तो शेयर्स का बराबर बंटवारा होगा जिसमें एक हिस्सा दादी का और दूसरा मेरे छोटे दादा दिग्विजय राजवंश का होगा। उसके बाद मेरे डैड प्रशांत राजवंश को और उनके तीनों बेटों यानी मुझे, अभिमन्यु और पार्थ का हिस्सा होगा। जैसा कि नकुल ने बताया, राजवंश एम्पायर के शेयर्स 6 हिस्सों में बंटने वाले थे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वसुधा और दिग्विजय के पास आना था, फिर प्रशांत के पास, तो फिर बचे हुए शेयर्स का बंटवारा नकुल, अभिमन्यु और पार्थ के बीच होना था। मतलब साफ था, अभिमन्यु के हिस्से के शेयर्स काफी कम होने वाले थे। नकुल की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर वही न दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वसुधा को देखा और उन्हें इशारा किया। देखते हैं आगे मीटिंग में क्या होता है। एक और बात, आयशा का जिक्र दिखाकर डायरेक्ट बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ और मैंने उसका कुछ सोचकर ही डाला है। एज आई सेड, पार्थ ही मेन विलन है तो वही रहेगा। बाकी जिसको स्टोरी बोरिंग लगती है वो मेरी दूसरी कहानी पढ़ सकते हैं, शायद वो इंटरेस्टिंग लग जाए।